ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत् मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः ब्रह्मणे देवाय गोब्राह्मणे हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद अध्याय 25 श्लोक नंबर 33। ना विदामा वयम् सम्यक् कर्तारं पुरुषसभा आत्मनस्य परस्यापि गोत्रं नाम च जत्कृतं। न विदाम वयं सम्यक् कर्तारं पुरुषार्षवा आत्मनस्य परस्यापि गोत्रं नाम च जत्कृतं। न विदाम वयं सम्यक् कर्तारं पुरुषार्षवा आत्मनस्य परस्यापि गोत्रं नाम च जत्कृतं। न विदाम वयं सम्यक् कर्तारं पुरुषार्षवा आत्मनस्य परस्यापि गोत्रं नाम च जत्कृतं। राजेश शब्दानुवाद ना नहीं विदाम जानती हूँ वयम मैं सम्यक भली भांति कर्तारम पैदा करने वाले को पुरुष सव हे मनुष्य में श्रेष्ठ आत्मनः अपना च तथा परस्य औरों का अपि भी गोत्रम गोत्र वंश का इतिहास नाम नाम च तथा जत कृतम कौन किसके द्वारा बनाया गया है। अनुवाद और तात्पर्य अभयचरण भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की उस युवत ने कहा, हे मनुष्य श्रेष्ठ, मैं नहीं जानती कि मुझे किसने उत्पन्न किया है। मैं तुम्हें ये ठीक ठीक नहीं बता सकती, ना ही मैं अपने या परायों के गोत्रों के नाम को जानती हूँ। तात्पर्य, जीव अपनी उत्पत्ति को नहीं जानता, वो यह नहीं जानता कि इस जगत की रचना क्यों हुई, दूसरे लोग इस जगत में क्यों काम कर रहे हैं और इस जगत का चरम स्रोत क्या है। कोई भी इन प्रश्नों के उत्तर नहीं जानता, यही अज्ञान या अविद्या है। जीवन की उत्पत्ति के विषय में खोज करने पर कुछ विख्यात विज्ञानी रासायनिक संगठन की कोशिकाओं के समुच्चय को ढूंढ पाए हैं, किंतु वास्तव में यह जगत में जीवन के मूल स्रोतों का कोई भी नहीं जानता। ब्रह्म जिज्ञासा पद का प्रयोग इस जगत में अपने अस्तित्व के मूल स्रोत को जानने की उत्सुकता को सूचित करने के लिए किया जाता है। न ही कोई दार्शनिक, न विज्ञानी या राजनीतिक ठीक ठीक जानता है कि हम कहाँ से आए और हम अपने अस्तित्व के लिए क्यों विकट संघर्ष कर रहे हैं और फिर हम कहाँ जाएंगे। सामान्यतः लोग का यह मत है कि हम सब यहाँ संयोग वश आए हैं और जब हमारे शरीर नष्ट हो जाएंगे तो हमारे सारा कार्यकलाप बंद हो जाएगा और हम शून्य हो जाएंगे। ऐसे वैज्ञानिक तथा विचारक निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी है। इसी श्लोक में सुंदरी तरुणी जीव की वास्तविक स्थिति बता रही है। वह पुरंजन को अपने पिता का नाम नहीं बता सकती, क्योंकि उससे यह ज्ञात नहीं है कि वह कहाँ से आई और न वह यह जानती है कि वह उस स्थान में क्यों आई है। वह स्पष्ट कह देती है कि इन सब बातों के विषय में वह अनभिज्ञ है। इस भौतिक जगत में जीव यही स्थिति है। कहने को तो अनेक विज्ञानी दार्शनिक तथा नेता है, किंतु ये नहीं जानते हैं कि कहाँ से आए और न यह जानते हैं कि तथाकथित सुख पाने के लिए इस जगत में व्यस्त क्यों है और इस जगत में रहने के लिए अनेक सुविधा है, किंतु हम इतने मूर्ख हैं कि कभी यह नहीं पूछते हैं कि किसने ये संसार को हमारे रहने योग्य बनाया और इसकी इतनी सुंदर ढंग से व्यवस्था की है। प्रत्येक वस्तु व्यवस्थित रूप से चल रही है, किंतु अज्ञानी लोग को सोचते हैं कि सारे वस्तुएं संयोग से बनी है और मृत्यु के पश्चात शून्य हो जाएंगे। वे सोचते हैं कि ये सुंदर आवास स्थल इसी तरह बना रहेगा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामेहं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्री गुरु श्रीपदकमलं श्री गुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजतं सहगण रघुनाथानीतं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादन सहगण ललिता श्री विशाखानीतांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रातःकालीन सत्संग में श्री श्री कृष्ण बलराम का मंदिर का ओर से भागवत कथे में पधारने वाले भक्त लोग को हार्दिक स्वागत करते हैं। आप लोग सुनते आ रहे हैं पुरंजन का उपाख्यान। ये तो बहुत बड़ा चरित्र है। लेकिन सुनना भी अच्छा है और इसको भी थोड़ा सुन के मनन भी करना चाहिए। ये भागवत कथा को इस प्रकार कहा जाता है, सत्संग छाड़ी कोई नू असत्य विलास। जब सत्संग को हम छोड़ देते हैं, सत्संग से हमें दूर जाते हैं, तब असत चीज़ का पीछे भागते हैं, और सत्संग बहुत उच्च स्तर पर होता है। अरे भागवत श्रवण करने मात्र से क्या क्या होता है, भागवत सुनने मात्र से, और भागवत का एक ही शब्द कोई उच्चारण मुख से करता है, करोड़ों जन्म का पाप नाश होता है एक ही शब्द उच्चारण करने मात्र से, भागवत का और भगवद्गीता का। ये बहुत व्याख्या किया गया है, इसलिए कहते हैं हर दिन हमें भागवत सुनते आ रहा है और सुनते भी है, लेकिन फिर भी हमारा कलमशता दूर नहीं जा रहा है, हमारा कलमशता दूर नहीं हो रहा है। कैसा, क्या करने से फिर होगा? बारंबार हमें सुनते जाएंगे तब हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, बारंबार हमें जब सुनते हैं। इसलिए प्रभुपाद का मिशन में ये एक ही सरल उपाय है, जो कि हमारा जो साधना है सुबह से लेकर 9 बजे तक, ये साधना बहुत हर व्यक्ति के लिए, हर भक्त के लिए। जब भी ये इसलिए प्रभुपाद एक ही जगह पे कहते थे, सिर्फ कोई साधना करेगा सुबह मंगल आरती से लेकर 9 बजे तक, साधना सिर्फ इतना ही करेगा, उसके लिए गोलोक वृंदावन का दरवाजा खुला रहेगा, सिर्फ इतना साधना करने मात्र से। इसलिए सुबह से लेकर हमारा साधना इतना तक 9 बजे तक, ये परफेक्ट टाइम पर होता है। अब देखिए सुबह मंगल आरती होता है परफेक्ट टाइम, वो टाइम ब्रह्म मुहूर्त 25 मिनट सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त रहता है, 25 मिनट से ज़्यादा नहीं है, और वो टाइम पे हमारा आरती होता है, मंगल आरती जो होता है 4:30 से 4:55 तक आरती होता है, वो आरती 25 मिनट है ब्रह्म मुहूर्त। लेकिन टाइम दिया गया है 3 बजे से 6 बजे तक के अंदर हमारा माला हो जाता है, और लाभदायी है, और लाभदायी है। और एक ही जगह पे कि साधु ने बता रहे थे, बोले मंगल आरती का पहले कोई भक्त मंगल आरती का पहले 16 माला जप कर देता है, मंगल आरती का पहले 16 माला कंटिन्यूस रेगुलर करके पूरा खत्म कर देता है, 16 माला जप करके जाके मंगल आरती में भाग लेता है, उसके लिए कृष्ण दौड़ के उसका पास आते हैं। इतना हम साधन करना इतना आसान नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग के लिए प्रभुपाद ने मिशन इसी टाइप के बनाए, कम से कम मंगल आरती का बाद से हम लोग को माला करके और 9 बजे के अंदर सब कुछ साधना कर लें। और उस साधना साधना सिर्फ संत का पास होता है, साधना जो होता है ये संत का पास होता है, भक्त का पास होता है, महंत का पास होता है ये साधना, और साधना होता है राजा का पास। साधना व्यक्ति का पास झुक जाएगा। समझ में आया नहीं आया? साधना साधन और साधना, ये दो अर्थ शब्द है। साधन कौन करता है? साधन मतलब राजा का पास है, साधन होता है, सब कुछ उसका पास होता है, और साधना मतलब भक्त का पास। इसे कहते हैं साधना व्यक्ति का पास झुक जाएगा, इसका सिर झुका रहेगा। इसलिए भक्त का पास है हमेशा के लिए, जितने बड़े राजा हो जाएं, जितने बड़ा मिनिस्टर क्यों नहीं हो जाएं, लेकिन जो साधन करने वाले व्यक्ति साधना व्यक्ति का पास वो झुका रहेगा। इसलिए हमको साधन में पूरा निष्ठा होना चाहिए और साधना करना चाहिए। तब आज का जो श्लोक है ज़्यादा से ज़्यादा स्त्री लोग का ऊपर है, लेकिन मैं इतना इसका ऊपर इतना बताने का नहीं है, आप लोग तो सुनते जा रहे हैं इसका ऊपर और ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, लेकिन व्याख्या करेंगे आज का क्या है, जो प्रभुपाद ने भावार्थ में बताते हैं। अभी तो हमको मालूम नहीं हम कहाँ से आए हैं, हमें जितने सब बैठे हैं अभी हमें क्लियर हुए, सबको मालूम है हमें कहाँ से आए, अभी तक हमें बता सकते हैं हमें कहाँ से आए? जब भी हमें किसी को भी पूछते हैं, कोई भी व्यक्ति को हमें पूछते हैं, वो व्यक्ति क्या बोलता है? अपना परफेक्ट एड्रेस दे देता है। कौन सा एड्रेस देता है? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, जर्मन, जापान, इटली, अमेरिका, रशिया, यह एड्रेस है हमारा, यह हमारा एड्रेस है। हमें रियल कहाँ से आए हैं? क्योंकि हमें शरीर संबंध में हर व्यक्ति को हम इस शरीर संबंधी एड्रेस ही बताते हैं। कोई किसी को भी पूछे कहाँ का एड्रेस बताएगा? शरीर जहां पैदा हुई वहीं का एड्रेस बताएगा, और कोई एड्रेस नहीं बताएगा, वहीं का एड्रेस बताएगा। लेकिन जो निर्विकार है, निर्विशेषवादी, शून्यवादी, उनको पूछा जाए कहां से आए, बोला शून्य से आए। एक बार मेरा साथ है कि चर्चा हुई, तब चर्चा होने के बाद मैंने पूछा, बोला भगवान निराकार है। बोला अच्छा, तो फिर आप कैसा साकार बन गए? भगवान जब निराकार है आपका कैसा साकार बन गए? उनको एग्जाम्पल दिया, भगवान के साथ आप संबंध नहीं होगा तब आप भी ये धरती पे नहीं आ सकते, भगवान के साथ आपका रियल संबंध है। तो भगवान ने यहाँ पे, लेकिन दूसरा अर्थ में उनको समझाया कि नॉर्मल एक एग्जाम्पल दिया, बिना बाप से बेटा बन सकता है? बाप नहीं है बेटा हो सकता है क्या? हो सकता है? इम्पॉसिबल। बिना बाप का आईडी से बेटा का आईडी प्रूफ बन सकता है? साइंटिफिक, ये साइंटिफिक एग्जाम्पल। बाप का नाम पहले, पिता का नाम का पहले होने का बाद है बेटा का नाम नीचे आईडी बनता है। किसी का भी आईडी बनाने के लिए किसी भी जगह पे चला जाओ, आईडी बनाने का पहले आपका प्रूफ मांगेगा। किसका प्रूफ मांगेगा? पिताजी का एड्रेस, बाप, पिताजी का नाम क्या है पहले। तो बिना पिताजी से तुम कैसा बन गए? और बोलते भगवान निराकार, भगवान निर्विशेष, भगवान नहीं है, इससे बढ़कर मूर्ख और कोई नहीं हो सकता। भगवान के साथ हमारा रिलेशन है और परमानेंट रिलेशन है, कुछ ना कुछ गलती करने का नाते भगवान ये भौतिक जगत में भेजा है, कुछ ना कुछ थोड़ी से मात्र से। और बिना आसक्ति से ये धरती में कोई नहीं आएगा, आसक्ति होने का नाते ये धरती पे व्यक्ति आता है, थोड़ी से आसक्ति मात्र से। आसक्ति रहित व्यक्ति कृष्ण लोक में पहुंचता है, आसक्ति रहित रहित व्यक्ति कृष्ण लोक में पहुंचता है, और आसक्ति में रहने वाले व्यक्ति भौतिक जगत में रहते हैं। जिसका आसक्ति नहीं होगा तो मतलब रेत सदृश आसक्ति रहेगा तब ये भौतिक जगत में आना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल देते हैं, संसार का लोग सत्संग में जाते हैं, संसार के लोग कोई दुकान पे जाते हैं, किसी घर में बास करते हैं, किसी परिवार में बास करते हैं, किसी शहर पे भी बास करते हैं, बास करते हैं, बस किसी भी जगह पे बैठे, बैठते हुए इमीडिएटली उठ के खड़े होकर चले गए। जाने के बाद वो भूल गए, भूल गए कि अज्ञानवशतः भूल गए कि, और जानते हैं कि भूल गए कुछ भी है, लेकिन अपना कपड़ा को भूल गए और कपड़ा वहीं पर छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल, कपड़ा पर छोड़ दिया और चले गए। चलने के बाद लेकिन वो कपड़ा के प्रति उनका आसक्ति है, लेकिन जाने के बाद है भूले नहीं, मेरा कपड़ा मैं छोड़कर आ गया, तो फिर क्या होगा? उसका मन कहाँ पे लगा हुआ? उसी कपड़ा पे। फिर वो क्या होगा? फिर वापस, क्योंकि आसक्ति था कपड़ा का प्रति, तो फिर वहीं पे लौट कर आएगा फिर कपड़ा को लेने के लिए। उसी प्रकार हम लोग संसार में, हम लोग आए कुछ ना कुछ हमारा आसक्ति था, इसी आसक्ति के कारण से हम ये धरती पे आए हैं। क्योंकि ये धरती पे आने का नाते हमको चार प्रकार दुख का अंदर झेलना पड़ता है, चार प्रकार दुख का अंदर हमको झेलना पड़ता है, और हर व्यक्ति ये चार प्रकार दुख में झेलेगा। लेकिन भागवत में प्रमाण है 21 प्रकार दुख है, लेकिन सांसारिक जगत का लोग को शिक्षा देने के लिए चार प्रकार दुख बताना पड़ता है। इसलिए एक श्लोक आता है, अह दुख महादुख दुखा दुख दर्जत कार्यत विस्मृति रत्न हरि नामैव केवलम। ये चार प्रकार दुख एक ही लाइन में, अह दुख महादुख दुखा दुख तरजत, चार प्रकार दुख। क्या दुख है? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, और क्या है? हाँ, बीमारी। ये चार प्रकार क्या है? दुख है, और हर व्यक्ति के लिए इस संसार में आना मतलब ये चार प्रकार दुख को झेलना पड़ेगा, गारंटी। इसे कोई बच नहीं सकता है, कितने पैसा कमा कर इकट्ठा कर दे बच नहीं सकता है, कितना अच्छा सुंदरी पत्नी आ जाए बच नहीं सकता है, कितना अच्छा गाड़ी में घूमे बच नहीं सकता है, कितना अच्छा मोबाइल को लेकर घुमाए वो नहीं बच सकता है। ये चारों चीज का अंदर झेलना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं अहो दुख, जन्म जात दुख। पहले जन्म से व्यक्ति का दुख चालू हुआ, जन्म लेता है बच्चा, धरती पे स्पर्श करता है, बच्चा का धरती पे चरण स्पर्श करने मात्र से उसका रोना शुरू होता है, और हर व्यक्ति का। ऐसा नहीं हम लोग को कोई बड़ा बन के नहीं आए, कोई 6 फुट 8 फुट 10 फुट बन के नहीं आए, छोटे बच्चे आते हुए धरती को स्पर्श करते हुए रोना शुरू करता है, और रोना शुरू किया मतलब दुख चालू हो गया। ऐसा नहीं कि वो हंस के आता है, कभी कोई भी संसार में जब भी धरती पे आएगा वो रोएगा, और रोते हुए आते हुए और हमें बनाते बहुत बड़े बड़े पार्टी, हैप्पी बर्थडे, वो आकर नहीं बोलता है आई लव माय इंडिया, ऐसा नहीं बोलता है, और रो के आता है। और रोना शुरू हुआ मतलब दुख चालू हो गया, दुख से और जन्म से दुख चालू हुआ, लास्ट तक भी दुख ही चलेगा, लास्ट तक। जन्म का बाद आता है क्या आता है, बुढ़ापा, बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापा का टाइम पे हमेशा के लिए वो रोएगा, ऐसा नहीं बुढ़ापा का टाइम पे कोई सुख मिल जाता है। और बुढ़ापा का बीच में बीमारी आएगा, ये शरीर जब तक है बीमार रहेगा, ये शरीर रोग का मंदिर है, इसलिए शरीर रोग का मंदिर है। और लास्ट समय मृत्यु का टाइम पे हंस के कोई नहीं जाएगा, संसार में कोई व्यक्ति गया हंस के, कोई हंसते हुए देखा कभी कोई व्यक्ति को मृत्यु का टाइम पे, कोई हंसता है सारा संसार को छोड़कर जा रहा हूँ, कि पत्नी को छोड़कर, कि पत्नी को, पति को छोड़कर जा रहा हूँ, इतना धन संपत्ति इकट्ठा किया था सब सब छोड़कर जा रहा हूँ, इतना मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहा था ये सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ, हंस रहा है क्या? वो टाइम पे भी रोता है, इसलिए कहते हैं अहो दुखम महादुखम दुखातुर दुखतर जत कार्यथ विस्मृति रतम। हमें संपूर्ण एक चीज को भूल चुके हैं, किसको भूल चुके हैं, प्रभु का नाम को, प्रभु का धाम को और प्रभु को, तीनों चीज को हम भूल चुके हैं। प्रभु का नाम को तो भूल चुके हैं, प्रभु को ही भूल चुके हैं, जो प्रभु रक्षा किया है, गर्भ का अंदर रक्षा किया है और धरती के लिए सब कुछ दिया है, फिर भी प्रभु का हमें भूल चुके हैं, भूलने के नाते ये सारा दुख मिलता है। और जगत में आने का उद्देश्य ये है क्योंकि हमारा आसक्ति है, और ये आसक्ति रहित कब होगा, क्या करने से आसक्ति रहित होगा, आसक्ति से कैसा दूर जाओगे, इच्छा तो विरुद्ध नहीं जाएगा, इच्छा सबका पास है, किसका कम है किसका ज्यादा है, सबका पास इच्छा रहता है, लेकिन ये इच्छा को थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ता है, भगवान का भक्ति में कैसा इच्छा लगा है, जो कुछ है प्रभु का है, ये कब हमारा मन में विचार आएगा, आएगा बताइए, सब कुछ प्रभु का है, कोई बोल सकता है? जैसा हम लोग जाते हैं प्रचार में जाते हैं तो प्रचार में लोग बोलते हैं आइए आइए महात्मा जी आइए, ये सब कुछ आपका है बोलते हैं ना, जिसका घर पे जाओ बोलते हैं सब कुछ आपका है, ना ये बच्चा किसका है, ना आपका है, और पत्नी किसका है, ना आपका है, सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है। और जब हम लोग कुछ रसीद फाड़ते हैं तब बहुत कंजूस हो जाता है, बहुत कंजूस, कभी कभी मैं एग्जाम्पल देता है यहाँ पे, जब गीता क्लास में प्रवचन देता हूँ तब बोलता हूँ, लोग 50,000 रुपया खर्च करके मंदिर आते हैं वृंदावन घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए, घूमना तो बोलना नहीं चाहिए ये शब्द, घूमना शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए, दर्शन करने के लिए, भगवान के साथ मिलने के लिए, भगवान के साथ बात करने के लिए आया हूँ वृंदावन धाम, और आके 50,000 रुपया खर्च करके आता है, लेकिन दान पेट पे चढ़ाता है कितना, 50 पैसा चढ़ाएगा, खर्चा किया कितना, गवर्नमेंट की दिया 50,000, भगवान को दिया 50 पैसा, कल्याण होगा यह हमारा, हमें सोचते हैं इस प्रकार के। और भगवान का दरबार पे आके सब कुछ समर्पित करने के लिए जब साधु संत लोग जाते हैं आप बोलते हैं सब कुछ आपका है, और इधर आए तो हमारा कितने आसक्ति है धन संपत्ति हर चीज के लिए, इसलिए आसक्ति होने का नाते बारंबार ये धरती पे हमको आना पड़ता है, एक बार नहीं बारंबार। इसलिए भगवान भगवद गीता में एक श्लोक में बहुत चीज बता दिया, बहुनाम जन्म नाम, ये शब्द, ये श्लोक को प्रभुपद ने कितना जगह पे कोटेशन किया, और ये श्लोक को हमेशा के लिए भक्त को याद रखना चाहिए, बहुनाम जन्म नाम ज्ञान मान माम प्रभुपद वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ, तो सब महात्मा है जो कि भगवान का बारे में समझ गया, और भगवान का बारे में समझने के बाद भगवान का शरण में आ चुका है, वही व्यक्ति समझ पाएगा, और भगवान को समझने के बाद भगवान का शरण में आने का बाद भगवान इमीडिएटली उसके लिए प्लेटफॉर्म बना के रख देते हैं, भगवत धाम में उसके लिए प्लेटफॉर्म खोला है। इसलिए शिले प्रभुपाद ये धरती में आने का उद्देश्य क्या, सिर्फ संत को, संत साधु भक्त महात्मा ये धरती पे आने का उद्देश्य होता है हम लोग को पतित को उद्धार करने के लिए, जो संत महात्मा का बात को सुनता है और सुन के अपना जीवन में उतारता है। इसलिए कहते हैं सत्संग मतलब क्या है, सत मतलब सत्य वस्तु के बारे में सुनना है, और सुन के ध्यान पूर्वक सुनना, कान से कान खोल के सुनना, कान खोल के सुन के फिर मन से चिंतन करना, मतलब दिल में इसको धारण करना, इसको कहते सत्संग, सत्य वस्तु के बारे में और सत कर्नर अंदर में प्रवेश करा के और हृदय में धारण करना। और हम तो आज सुनते काल को सब कुछ भूल जाते हैं, आज सुनते हैं काल को भूल जाते हैं, फिर हमारा आसक्ति उसी पे। इसलिए है कि जगह पे एग्जाम्पल देते थे, सारा संसार की कीचड़ है, सारा संसार की कीचड़ है, कीचड़ में बहुत सारा कीड़े होते हैं, एक ही कीड़ा को उठाकर बाहर फेंक दो, फेंकने के बाद वो कीड़ा क्या करेगा, घूम फिर के आके उसी कीचड़ में जाएगा। हम लोग कितने बार भी सुन रहे हैं, कितने साल से भी सुन रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, जानते सुनते देखते, फिर भी हमारा मन कहाँ पे लगा हुआ, कहाँ पे लगा हुआ, उसी कीचड़ पे। आसक्ति रही तो कब होगा, जानते हैं कम से कम ये करने से ये होता है, किस प्रकार हमें प्रभु का भक्ति करके और प्रभु को संपूर्ण सब कुछ समर्पित करके प्रभु का धाम को लौट जाए एक बार। इसलिए कहते हैं न तद भाषय सूर्य न शशांक न पावक जदगत न निवर्तनते तधाम परम। ये सूर्य का आलोक से कि चंद्र का आलोक से मेरा लोक आलोकित नहीं होता है, मेरा शरीर से आलोक से मेरा संसार सारा जगत आलोकित होता है, गोलक वृंदावन का। ये बहुत सारे लोग भी मन में प्रश्न आता है, जब भी लेक्चर होता है बहुत सारे लोग का मन में यही प्रश्न आता है, क्या आप गोलोक वृंदावन देख कर आया क्या, बहुत सारे लोग का मन में ये भी प्रश्न आ जाता है। हम जब इस प्रकार के एक्सप्लेन करते हैं, कभी लोग को सुनाते हैं तो बोलते हैं अरे गोलोक वृंदावन में ये है वो है, वहाँ पे जाने का बाद है कभी जन्म मृत्यु बुढ़ापा व्याधि नहीं होता है, दुख नहीं है, वहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल नहीं तो डॉक्टर कहाँ से आएंगे, वहाँ पे बाल पाकता नहीं, वहाँ पे हमेशा के लिए व्यक्ति का उम्र 16 साल होता है। तो हर व्यक्ति का मन में प्रश्न जब आ जाता है बोलते हैं आप देख के आया क्या, हमें उनको इस प्रकार के आंसर देते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है वो अपना पिताजी को देखा था क्या, जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन उसका पिताजी को देखा था क्या, नहीं देखा था, लेकिन उसका पिताजी को पहचानने के लिए कौन बताती है, उसका माँ बताती है। उसी प्रकार ये शास्त्र जो है गीता और भागवतम ये हमारा माँ है, हमारा परम पिता का धाम जो है उसका बारे में बताते हैं और धाम किसी प्रकार की है। इसलिए हमको शास्त्र पढ़ना जरूरी है और शास्त्र सुनना जरूरी है, इससे हमको मालूम पड़ेगा। जन्म कोटि लागी रगर हमारी बरहूं सबू न तो रहूं कुमारी तो जहूं न नारद करहूं उपदेशु आप कहूं सत बार महेशु। कोटि त्यक्त्वा हरि स्मरेत, कोटि त्यक्त्वा हरि स्मरेत, हमें कितने जन्म हो चुका है जो कि हरि को भूल चुके हैं, कोटि कोटि जन्म, एक ही बार नहीं करोड़ों करोड़ों जन्म मिलने के नाते हमें भगवान को संपूर्ण भूल चुके हैं। इसीलिए कहते हैं कोटि कोटि काम को छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। एक बार बताया था हाँ, 100 काम को छोड़ के क्या करना है, स्नान करो, 1000 काम को छोड़ के भोजन करो, करोड़ों काम को छोड़ के हरि नाम जपिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आसक्ति का जो बीज है इसको कहते हैं वासना, जो आसक्ति है आसक्ति का बीज है वासना। आसक्ति तो ऐसा ही खत्म हो जाएगा, प्रभु का नाम जपने से आसक्ति भी खत्म हो जाएगा सब कुछ, लेकिन जो वासना है इसका जो बीज है खत्म नहीं होता है। वो बीज को खत्म करने के लिए एक चीज चाहिए, साधु संग, सिर्फ भागवत प्रवचन सुनना, सत्संग से ये वासना छूटता है, वासना छूटेगा, सिर्फ वासना रहित हो जाएगा सिर्फ सत्संग से और किससे नहीं। इसलिए कहते हैं वासना जस्य जत्र स्यात् सतम स्वप्ने पश्यति स्वप्नम बनमरण गेह वासना तु बपुर नुणाम। वासना जस्य जत्र स्यात् जहाँ पे वासना रहता है वहाँ पे आसक्ति जरूर, और आसक्ति रहने के बाद फिर शरीर मिलता है, अलग अलग का शरीर, फिर वही वासना कट जाएगा, खंडित हो जाएगा, वासना रहित हो जाएगा सिर्फ साधु संग से, साधु का संग करना है, सत्संग में बैठना है, प्रवचन सुनना है और प्रवचन का माध्यम से वो कट जाएगा। और साधु संग का बहुत महत्व दिया गया है, बहुत बहुत महत्व, तपस्या से बढ़ के, तपस्या कितना भी कर लो लेकिन साधु संग पल्ला उठ जाएगा, दोनों को तराजू में रखो, इसलिए कहते हैं तातो स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तुलो नत ही सकल मजिलो सुख लव सतसंग। तातो स्वर्ग अपवर्ग, आप स्वर्ग लोक को चला जाओ, सुख को प्राप्त कर लो, जैसे जितना सब कुछ करने के बाद एक ही सारा चीज को एक ही तराजू में रखो एक ही साइड में, और एक ही साइड में साधु संघ का तत्क्षणा तो थोड़ी सी साधु संघ किया, इस साधु थोड़ा से साधु संघ का फल को एक ही साइड में रखो, देखना किसका भरा, कौन सा साइड का जो तराजू दोनों साइड में होता है ना, कौन सा उठ जाएगा, ये भारी पड़ जाएगा जो सत्संग का फल। इसीलिए सत्संग, सतसंगद मुद मंगल मूला सोई फल सीधि सब साधन फूला। सत्संग सब मंगल का मूल है, जैसे फूल से फल और फल से बीज और बीज से वृक्ष होता है, उसी प्रकार सत्संग से विवेक जागृत होता है, और विवेक जागृत होने का बाद भगवान का साथ है प्रेम बढ़ता है, और प्रेम में बढ़ने का बाद भगवान को प्राप्ति होता है। इसलिए सत्संग का कितना महत्व है, सत्संग में करने से ये आसक्ति और प्लस वासना दूर होता है। तब कुछ अज्ञान वशत अनजान में कर्मफल हमको लगा जाता है, कभी कभी अज्ञान वशत कर्म ऐसा होता है, हमको जानकारी नहीं होता है, जानकारी नहीं होकर वो फल फिर हमको मिल जाता है अज्ञान वशत। अज्ञान वशत पाप किया, आपको मालूम नहीं आप पाप कर लिया, वो पाप भी लग जाता है। अभी एक ही कहानी है, ये बहुत अच्छा कहानी है। एक बार एक राजा ने ब्राह्मण का लंगर में महल के आंगन में भोजन करा रहा था। राजा को रोसया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। कभी खुला में रोसई करना, इससे भी शिक्षा मिलता है, कभी खुला में कुकिंग नहीं होना चाहिए। उसी समय एक जो है चील, जब ये खुला में कुकिंग कर रहा था, चील समझ रहे ना, क्या बोलते हैं हिंदी में और दूसरा कुछ बोलते हैं, चील बोलते हैं ना, चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा का महल के ऊपर से गुजर रहे थे। तब पंजे में दबे सांप ने अपने आत्मरक्षा के लिए, चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। तब रोसैया जो लंगर ब्राह्मण के लिए पका रहा था, उसी लंगर पे सांप के मुख से निकली हुई जहर एक बूंद वहां बर्तन में गिर पड़ा, किसी को कुछ पता नहीं चला। फलस्वरूप वह ब्राह्मण जो भोजन करने आए थे, उन सब की जहरीला खाना खाते ही मौत हो गई। अब जब राजा को सारे ब्राह्मण की मृत्यु का पता चला, तो ब्रह्महत्या होने से उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे जमराज के लिए भी ये फैसला लेना मुश्किल पड़ गया। इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा, विचार करने लगा, जमदूत का भी मुश्किल पड़ गया। राजा जिसको पता नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, रोसैया को भी पता नहीं, राजा को पता नहीं, फिर रोसैया को भी पता नहीं, खाना में किस प्रकार जहरीला कहां से आई। फिर चील जो जहरीला सांप लिए राजा के ऊपर से गुजर रही थी, उसको भी पता नहीं, और वो सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा करने के लिए जहर निकाला है। ये चारों आदमी सोचने लगे रहे किसका खाता में जाएगा, और जमराज सोच रहे ये चारों लोग तो थे, और किसका खाता में ये जाएगा, ये ब्रह्महत्या का पाप। बहुत दिन तक ये मामला जमराज का फाइल में अटका रहा, रहता है ना, पेंडिंग रहता है ना, ईमेल जब आता है मेल आता है तो पेंडिंग रहता है, इसी प्रकार ये ईमेल तो गया होगा जमराज के पास, वो भी पेंडिंग था, तो वो बहुत दिन अटक रहा। फिर कुछ समय का बाद वो ब्राह्मण राजा ने मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछ रहा था। वो रास्ता पूछ के महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मण से भी यह कहा कि देखो भाई, जरा ध्यान रखो, वो राजा आप जैसे ब्राह्मण को खाना देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने इस शब्द कहे, उसी समय जमराज ने निकला। जमराज ने निकल के फैसला किया, डिसीजन लिया। क्या लिया? उन मृत ब्राह्मण के मृत्यु के पाप का फल इस महिला का खाता में जाएगा और इससे उस पाप का फल भुगतना होगा। जमराज ने दूतों से पूछा जमराज को, प्रभु ऐसा क्यों हुआ, किसके लिए उसका खाता में जाएगा, जबकि मृत ब्राह्मण की हत्या में उस महिला की कोई भूमिका कोई रोल नहीं है। तब जमराज ने कहा कि भाई देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है। जब कोई पाप करता है उसका आनंद मिलता है, नहीं मिलता है? कोई चोरी करेगा कितना आनंद मिलता है, चोरी का सामान मिल गया आनंद मिलता है ना, उसी वगैरह उसको तो आनंद मिलता है। पर उन मृत ब्राह्मण की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिलता है, ना रोसैया को आनंद मिल रहा है, ना ही सांप को आनंद मिल रहा है, ना ही चील को आनंद मिल रहा है, किसको नहीं आनंद मिल रहा है। पर उस पाप कर्म की घटना की बुराई करने के भाव से बखान करने वाली महिला को जरूर आनंद मिल रहा है। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप का कर्म का फल अब इसी महिला के खाता में चला जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से बुराई करता है तब उसी व्यक्ति के पाप का हिस्सा उस बुराई करने वाले का खाता पे डाल दिया जाता है। कहने का अर्थ है, कभी भी किसी टाइम पे किसी भक्त का पास बैठते हैं तब भी हमें किसी का बारे में चर्चा क्या करना चाहिए, करना चाहिए। फिर वृंदावन धाम में कहाँ पे करते हो अलग बात है, फिर भी वृंदावन धाम में, इसलिए मैं कितना बार बताया, वृंदावन धाम में बैठ के किसी भक्त का बारे में आप चर्चा करते हो तब आपको रोमिंग चार्जेस लगता है। रोमिंग चार्जेस समझ रहे हैं, डबल रोमिंग मतलब डबल। कैसा? बाई चांस आप मोबाइल लिया, यूपी का नंबर, आप उड़ीसा गए जगन्नाथपुरी, ठीक है, नहीं गए लेकिन फिर भी जाना है जो भी उड़ीसा में, आप यहां से फोन करोगे तब उसका पास उसका साथ बात करना है, तब इसका पैसा कटेगा फिर उसका भी पैसा कटेगा, रोमिंग चार्जेस सही है। उसी प्रकार वृंदावन धाम में बैठे हो तो वृंदावन धाम में बैठ के कभी भी किसी भी भक्त का बुराई का बारे में नहीं सोचना, नहीं करना चाहिए, ये अज्ञान वशत में पाप का खाता में चला जाएगा। इसलिए सोच समझ के वृंदावन धाम में बहुत महत्वपूर्ण बात करने के लिए। इसलिए कहते हैं हमेशा के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्र में वर्णन है स्त्री का ऊपर है, ज़्यादा से ज़्यादा नारी का ऊपर रखे, माताओं लोग का ऊपर है। क्यों है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा माताओं लोग, दो तीन माताजी लोग बैठ जाएंगे ना, आप देखना अभी प्रसाद महल पे प्रभु जी लोग का ज़्यादा आवाज़ नहीं है, है? माताजी लोग का साइड में ज़्यादा से ज़्यादा, और झगड़ा होती है तो घर पे, घर का अंदर झगड़ा होता है तो पति इतना झगड़ा करने वाला नहीं होता है, पति शांत में बाहर से आता है, शांत में जो कुछ देंगे खा के सो जाएगा, लेकिन पत्नी सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ पीन मारते रहेगा, कैसा कुछ ना कुछ कुछ करे, ये आदत है। लेकिन फिर भी वो आदत को सुधारने के लिए शास्त्र कहता है हमेशा के लिए पति का पैर को दबाते रहें, पति भी दब के रहेगा, जब भी पति का पैर को दबाना चाहिए, और पति का पैर को दबाने का पहले अभी पति का पैर नहीं दबाता, मुख को दबा देता है। अभी के समय का जो कहानी है, पहले जवान में पहले समय पे क्या होता था, जिस दिन शादी होता था शादी का दूसरा दिन पत्नी पति का पैर को धो के पानी पीता था, अभी का संस्कार में नहीं है, अभी का समय पे नहीं है। अभी भी उड़ीसा में ये राज्य में है कुछ ही गांव इलाका में, लेकिन अभी है नहीं, ये संस्कार है, ये जगन्नाथ का संस्कृति में है और वो उड़ीसा क्षेत्र में है, अभी प्रचलित भी है। और कभी भी झगड़ा नहीं होगा। घर का अंदर ज्यादा से ज्यादा झगड़ा होता है, बाप बेटा के साथ झगड़ा नहीं होता है, ये समझिए। सासू बहू का अंदर इतना झगड़ा नहीं होता है, भाई बहन के साथ इतना झगड़ा नहीं होता है। ज्यादा से झगड़ा किसके साथ होता है? मियां बीवी के साथ, पति पत्नी का झगड़ा। और झगड़ा नहीं होगा जब ये कर्म में लिप्त रहेगा। जब भी ये हुआ, पहले पति का पैर को पकड़ ले, क्योंकि पति उसका देव है, पति उसके लिए प्रभु है, उसके लिए भगवान है। भगवान का स्वरूप मान के पतिव्रता नारी का कर्तव्य है पति का कैसा सेवा करना है, तो हमेशा के लिए अच्छा से चलेगा। इसलिए कहते हैं हस्बैंड वाइफ एक ही साइकिल का दो पहिया, एक ही साइकिल का दो पहिया, दो साइकिल हो नहीं तो एक मोटरसाइकिल हो, जो भी है ये दो पहिया है। दो पहिया सही से चलाने के लिए दोनों सही दिशा पर चलेगा तब ठीक चलेगा, सही ना। दोनों पहिया पति और पत्नी दोनों पहिया है, दोनों पहिया सही दिशा में चलेगा तब ठीक है, और दोनों अपोजिट ये में चलेंगे तो कैसा होगा, चलेगा टूट जाएगा फूट जाएगा, सारा संसार में यही हो रहा। इसलिए पति पत्नी सही संबंध रख के विचार करना चाहिए। इसलिए कि श्लोक में कहते हैं वैवाहिक विधि स्त्रीण संस्कार वैदिक स्मृत पति सेवा गुरु वासो गृहार्थे अग्नि प्रक्रिया, ये मनुस्मृति में आता है। स्त्री के लिए वैवाहिक विधि पालन करना है वैदिक संस्कार है, उसके लिए यज्ञों उपवीत समान है। विवाह करना जरूरी है और वैवाहिक विधि को पालन करना जरूरी है, उसके लिए वैदिक संस्कार ही है। अविवाहिता नहीं, कोई भी शास्त्र में मेंशन नहीं है। जिस प्रकार कोई भी शास्त्र में मेंशन नहीं है मनुष्य के लिए नॉनवेज खाना है, कोई भी शास्त्र में नहीं है, उसी प्रकार विवाह करना स्त्री के लिए विधि है। दूसरा है पति सेवा ही गुरुकुल का वास है, और पति का सेवा का व्यक्ति और कुछ नहीं, पति का सेवा करता है वो गुरुकुल में वास करना सदृश है। मतलब गुरु का वास, गुरुकुल में वास करना मतलब वेद अध्ययन सदृश है, और गृह कार्य में लिप्त रहना है। गृह कार्य में, गृह का बाहर नहीं, गृह कार्य। अभी का समय में तो गृह कार्य नहीं, अभी सब बाहर का कार्य। अभी लेडीज लोग कमा रहे हैं, जेंट्स लोग घर पर बैठ कर खा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, जेंट्स ही कमाता था और लेडीज घर का बाहर नहीं जाता, घर का सारा काम करता था। अभी ऐसा हो गया, बहू बाहर काम कर रहा है और सास घर का अंदर काम कर रहा है। अभी ऐसा ही हो चुका है, सही ना। अभी ऐसा हो चुका है, बहू बाहर काम कर रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। ये होता है पति का धर्म, नहीं पत्नी का, नारी का धर्म ये है। पति सेवा ही गुरुकुल का वास और गृह कार्य ही अग्निहोत्र का कहा गया है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा, पति का व्यक्तित्व और मन और कहां नहीं जाए, मानस की कथा है। धर्म के बिना नीति विधवा, नीति के बिना धर्म विदुरा, ये साइंस कहता है। धर्म के बिना नीति विधवा है, चल कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन कहता है साइंस विदाउट रिलीजन इज ए लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ए ब्लाइंड। धर्म के बिना नीति विधवा है और नीति के बिना धर्म विधुरा है। और हम लोग क्या नहीं क्या कर रहा है, फिर भी दूसरा एग्जाम्पल में देते हैं, हमें संसार के लिए क्या नहीं कर रहा है, हमें शरीर के लिए क्या नहीं कर रहा है, फिर भी ये हमारा साथ नहीं दे रहा है। कैसा, अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती है, बुढ़ापा में अपनी काया भी साथ नहीं देता है, सारा जीवन दावा पर लगा दिए जिसके लिए अंत समय में वो माया भी साथ नहीं देती है। सारा जगत के लिए हमें क्या नहीं कर रहा है, सारा संसार और शरीर दो चीज का पीछे भाग, संसार और शरीर। शरीर मिला है संसार के लिए और संसार मिला है शरीर के लिए, दोनों का दोनों संबंध है, लेकिन क्या कर रहा है। और हमें जो कुछ कर रहा है संसार के लिए नहीं तो शरीर के लिए, है कि नहीं, जो कुछ कर रहा है किसके लिए कर रहा है, संसार नहीं तो शरीर, और ये सब कुछ नाशवान है, सब कुछ नाशवान है, फिर भी हम नहीं समझ रहे। और ये तो और समय नहीं है बताने के लिए, लेकिन चैतन्य चरितामृत का कुछ था बताने के लिए, लेकिन ये नहीं बता सकते, इसको यहीं पे और एक ही 5 मिनट और लेते हैं। 5 मिनट में एक ही ये था, और एक ही कहानी था जो कि संसार का लोग किस प्रकार घूमते फिरते अपना खुद को नहीं पहचान पा रहा है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसको सुनने के लिए। सिर्फ 5 मिनट ले रहे हैं। एक ही शहर पे एक ही नई दुकान खुली थी, जहां कोई भी युवक जाकर अपने लिए एक योग्य पत्नी ढूंढ सकता था। एक युवक उस दुकान पर पहुंचा, दुकान में अंदर उसे दो दरवाजे मिले, दरवाजा दो होता है, एक पर लिखा था जुआ पत्नी और दूसरे पर लिखा था अधिक उम्र वाले पत्नी। युवक ने पहले दरवाजे पर धक्का लगाया, फिर अंदर पहुंचा, अंदर में पहुंच के फिर उसे दो दरवाजे मिले, पत्नी बगैर कुछ भी ना मिली, फिर दो दरवाजे मिले, पहले पर लिखा था सुंदर और दूसरे पर लिखा था साधारण पत्नी। युवक ने पुनः पहले दरवाजे पे प्रवेश किया, न कोई सुंदर था न कोई साधारण, वहां कोई नहीं था। फिर सामने फिर दो दरवाजा मिले, जिन पर लिखा था अच्छा खाना बनाने वाली और दूसरा पर लिखा था खाना न बनाने वाली। युवक ने फिर पहला दरवाजा को खोला, फिर दरवाजा पर खोला तो स्वाभाविक तुम भी यही करते हो, सारा संसार का लोग वही कर रहा है। उसके समक्ष फिर दो दरवाजा आए हैं, जिन पर लिखा था अच्छा गाने वाले और अच्छा नहीं गाने वाले। युवक ने फिर जाकर पुनः पहले वाला दरवाजा का चुना, फिर खोला, उसका सहारा लिया। अब उसके सामने दो दरवाजा पर लिखा था दहेज देने वाले और दहेज नहीं देने वाले। युवक ने फिर पहला दरवाजा खोला, ठीक हिसाब से चला, मैथमेटिक्स को देखते रहा, मैथमेटिक्स आप जानते हैं हिसाब किताब तो लगाते रहा, समंदर से चला। परंतु इस बार उसके सामने एक दर्पण लगा हुआ था, सामने में बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ था और उस पर लिखा था आप बहुत अधिक गुण से इच्छुक है, समय आया गया है कि आप एक बार अपना चेहरा को देख लो। ऐसे ही जिंदगी है हमारा, चाहे चाहे दरवाजे के टोटल भूल गए हो और अपना चेहरा देखना ही भूल गए हो, क्यों दरवाजा के ऊपर लिखा देखते रहा सुबह से शाम तक, तो हम लोग देखते रह रहा है लेकिन खुद का चेहरा को अभी तक हमें देखा नहीं। उसके चाह गिरी जो चाह में चला वह धीरे धीरे अपने चेहरे की ही भूल गया, जिसने चाह का सहारा पकड़ लिया, एक चाह दूसरे में ले गए, हर दरवाजे में दरवाजे पर ले गए, कोई नहीं मिल कोई मिलता नहीं, जिंदगी बस खाली है, यहाँ कभी कोई किसी को नहीं मिला। हाँ, हर दरवाजा पर आशा लिखा रहता है, आशा लगी है कि हर दरवाजा में है, हर दरवाजा में तकती मिली है कि जरा और चेष्टा करो, आशा बधाई है, आशा बंधी है, फिर सपना देखा लेकिन खाली ही रह गई। अब समय आ गया, आप भी दर्पण के सामने खड़े होकर देखो, आपने को खुद को पहचानो। जिसने अपने को पहचाना वो संसार से फिर कुछ भी नहीं मांगता है, और फिर कुछ नहीं मांगने से और ये संसार में नहीं आना पड़ता है, क्योंकि भगवान का पास है, हमको एक चीज मांगना है और एक चीज इच्छा करना चाहिए। क्या क्या इच्छा करना चाहिए? सिंपल है, प्रभु का भक्ति और प्रभु का दास बना के प्रभु का धाम में कैसा वास दे दे। जय जगन्नाथ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, शिशि गौर निताय की, कृष्ण बलराम की, राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, संवेद गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।